सफल और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री श्री वल्लभ भाई ककाडिया जी, बहन निर्मला बहन वधवानी जी, भारत की संसद में मेरे प्रिय सहयोगी भाई डॉक्टर किरीट सोलंकी जी, अहमदाबाद शहर के लोकप्रिय मेयर भाई गौतम शाह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री प्रवीण भाई पटेल जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, डॉक्टर तपन मिश्रा जी जो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर हैं, जहां मुझे आज सुबह 3 घंटा बिताने का मौका मिला वैज्ञानिकों के साथ, म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्री मुकेश कुमार जी, मंच पर विराजमान गुजरात विधानसभा के एक और विधायक श्री भूषण भट्ट जी, यहाँ उपस्थित मेरे अपने मंत्रालय के वरिष्ठ सहयोगी IITM पुणे के डायरेक्टर प्रोफेसर रवि नंजुदिया और इस महत्वपूर्ण सफर कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर गरफान बेग, मंच पर बहुत सारे और महान लोग बैठे हैं और यहाँ सभागार में भी बहुत सारी महान हस्तियाँ हैं, अहमदाबाद के बहुत प्रतिष्ठित संस्थानों के डायरेक्टर्स हैं, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं, यंग लोग हैं, हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, मीडिया के मित्र हैं। सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब दिल्ली से आकर और अहमदाबाद में कोई कार्यक्रम करना हो और सारी की सारी जिम्मेदारी अहमदाबाद के लोगों की हो तो कार्यक्रम में आने से पहले थोड़ी टेंशन होती है, लेकिन टेंशन दूर हो जाती है कि ये नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में जा रहे हैं, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, कार्यक्रम तो ठीक ही होगा। आप सब यहाँ 5 बजे के पहले के आए हुए हैं और लगभग 7 बजने वाला है, मैं आपके धैर्य को भी हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया है। विषय की गहराई में मुझे लगता है कि आप डूबने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सफर कार्यक्रम आज आपके सामने प्रारंभ हुआ तो मुझे याद आया कि एक हम लोग 70 के दशक में बहुत पॉपुलर फिल्म हुई थी राजेश खन्ना जी की, जिसमें वो कहते थे जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो मुझे उस सफ़र का याद आया। हमारी कोशिश है कि विज्ञान के माध्यम से आपके जीवन के सफ़र में कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसके लिए एक खूबसूरत सफ़र के ऊपर बहुत समय से वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे तो वो उस समय क्या होता था मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन उस समय मुझे मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि भारत के अंदर एक विदेशी एजेंसी ने आकर इस कार्यक्रम को विकसित करने के लिए केवल कंसल्टेंसी के रूप में 89 करोड़ रुपए जो है उसकी मांग की थी। लेकिन मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ अपने वैज्ञानिकों को। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद सारे देश के अंदर वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार के उत्साह का, जिस प्रकार की अपनी कीर्ति का, जिस प्रकार की अपनी मेहनत का, जिस प्रकार के अपने जज्बे का उन्होंने परिचय दिया, और एक के बाद एक इतनी चीज़ें पिछले 3 साल के अंदर इस देश के जीवन के अंदर बेहतरी लाने के लिए विज्ञान के माध्यम से उनको देश के सामने प्रस्तुत किया। और मैं समझता हूं कि वो तो कंसल्टेंसी फीस थी 89 करोड़, ये काम तो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम पैसे के अंदर जो है इतने समय के अंदर विकसित करके दिखा दिया उसके मुकाबले। इसलिए इस अवसर पर आप सब की ओर से मैं वैज्ञानिकों को भी बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर उनके मुख्यमंत्री के रूप में बहुत वर्षों तक उनका शासन प्रशासन देखा, उनके विजन को देखा, उनकी सोच को देखा, उनके काम को देखा। लेकिन हम लोग मोदी जी को ऐसे तो जानते थे, एक पार्टी के कार्यकर्ता और सहयोगी के रूप में जानते थे, एक संघ का प्रचारक जो संगठन मंत्री के रूप में काम करता है पार्टी में उसके रूप में जानते थे, लेकिन बहुत नज़दीक से उनको काम करते हुए देखने का मौका प्रधानमंत्री के रूप में हमें मिला। 3 वर्ष से मैं उनकी कैबिनेट में काम करता हूँ। असाधारण जज्बा है उनके पास, असाधारण हिम्मत है, असाधारण मेहनत है, असाधारण आइडियाज़ हैं, असाधारण विजन है, और वो देश के अंदर इस देश के हर इंसान की हर तकलीफ को, हर जो तरीका उसके लिए ढूंढा जा सकता है, वो चाहे विज्ञान हो, चाहे किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ विषय हो, वो उसके माध्यम से इस देश के लोगों की तकलीफ को दूर करना चाहते हैं। और शायद आपको सुनकर खुशी होगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी एनवायरनमेंट के संदर्भ में, ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में, क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए विषयों के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे संसार को नेतृत्व प्रदान किया है। और इस बात की मुझे पहली बार कल्पना तब हुई, यूं तो हम अखबारों में पढ़ते थे, देखते थे उन्होंने पिछले वर्ष पेरिस के समिट में किस प्रकार का नेतृत्व प्रदान किया, किस प्रकार से 100 से ज़्यादा देशों का, उन देशों के अंदर जहाँ सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है उसके उसको उनका सोलर अलायंस बना दिया, उसका नेतृत्व भारत ने संभाल लिया, उसका दफ्तर भारत के अंदर खुल गया। लेकिन पिछले वर्ष मैं एक कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत का नेतृत्व करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गया, वो क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल था और मिशन इनोवेशन, और जो दुनिया के जो टॉप 20-25 विकसित देश हैं, चीन, अमेरिका, यूरोप के, जापान, इस तरह के, उन लोगों के बीच में मीटिंग के अंदर वहाँ के प्रतिनिधियों ने कहा कि आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता है कि ये जो मिशन इनोवेशन मूवमेंट पूरे दुनिया के अंदर शुरू हुआ है, इस मिशन इनोवेशन शब्द को भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सारे दुनिया के सामने जो है ये पेरिस के अंदर रखा था। और हम लगातार देखते हैं कि उनका इस तरह के विषयों के ऊपर जो सीधे सीधे लोगों के जन स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, उनका बहुत गहरा ध्यान है। मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी और पूरे जीवन मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, दिल्ली में भी और केंद्र में भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम किया है, और मैं जानता हूं कि ये जो पॉल्यूशन है और ये जो जहरीली हवा है ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है, और ख़ासकर उन छोटे बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है जो अभी अभी अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। वो अपनी तकलीफ़ बता नहीं सकते, वो छोटा मोटा खांसी करके संकेत दे सकते हैं, उनको तकलीफ़ हो भी रही हो, घुटन हो भी रही हो, उनके फेफड़े ख़राब भी हो रहे हो तो भी वो शायद बता नहीं पाएंगे। लेकिन कितनी प्रकार की दमा से लेकर COPD तक और दूसरी अनेकों बीमारियां फेफड़ों से जुड़ी, और भारत जैसे देश में जहां ट्यूबरक्लोसिस दुनिया की तरह एक बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा बन चुकी है, और ख़ासकर उसमें भी जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है, ये सारी चीज़ें जो है ये सीधे सीधे इनमें से बहुत सारी चीज़ों का जो है पॉल्यूशन के दुष्प्रभाव से बहुत बड़ा संबंध है। और इस नाते ये जो एक सफ़र नाम का आंदोलन हमने भारत में विज्ञान के माध्यम से प्रारंभ किया है, जिसकी शुरुआत पुणे से की थी, बम्बई और दिल्ली से होते हुए अब ये अहमदाबाद के अंदर आया है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ अहमदाबाद के अंदर जब हम इसका उद्घाटन करने के लिए आए हैं, इस ऐप को अहमदाबाद के लोगों को समर्पित करने के लिए आए हैं, और ये जानकारियाँ जो आपको देगा वो सारे लोगों को उपलब्ध होनी शुरू होगी, तो उस समय यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ के जो विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनसे जुड़े हुए लोग, जिनकी अभी चर्चा की गई, पब्लिक हेल्थ वालों की बात की गई, NRDC वालों की बात की गई, मैनेजमेंट वालों की बात की गई, और भी बहुत लोगों की बात की गई, और ख़ासकर वो नौजवानों की टीम जिसने जो है बहुत दिन तक काम किया। आपको बताया गया कि ये जो आज समर्पित हुआ है इसके लिए यहाँ कम से कम 1-1.5 साल से काम हो रहा था। भाई क्रीत सोलंकी जी, समय समय पर हमारे आदरणीय अडवाणी जी, और आपके एक और सांसद जो आज यहाँ दिल्ली में, यहाँ अहमदाबाद में नहीं, वो तो 2 बार मेरे घर पर भी आए, प्रवेश रावल जी, वो लगातार पूछा करते थे कि ये कब शुरू होने वाला है, इसके अंदर से क्या क्या लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और ये सब लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और आज जो मैं यहाँ नज़ारा देख रहा हूँ, क्योंकि हमने आपको एयर की क्वालिटी के बारे में बता दिया, अगर वो खाली पर्याप्त नहीं है, हमने आपको वेदर फोरकास्टिंग करके उसके बारे में बता दिया, ये भी पर्याप्त नहीं है। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी आपके पहले जहाँ जहाँ हमने जो जो सिस्टम्स लगाए हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सिस्टम है अभी तक का, जिसमें कि PM1 यानी पार्टिकुलेट मैटर का भी जो सबसे सूक्ष्म वैरायटी होती है, और मैं आज जब गया था सैटेलाइट हमारा जो अप्लायंसेस सेंटर है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक इसकी जो एक स्टेशन है इसका उस इंस्टीट्यूशन के अंदर लगा हुआ है, वहाँ मैं सारी चीज़ें देखकर आया। तो यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अहमदाबाद में, वो इन्फॉर्मेशन मैं ये समझता हूँ कि पिछले 3 जगहों से भी ज़्यादा एक स्टेप आगे और एक स्टेप और एडवांस्ड है। लेकिन हमारे लिए इसका सदुपयोग कैसे करना, इस जानकारी को प्राप्त करना, खाली अगर हवा ख़राब है तो ये वार्निंग तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वार्निंग से सचेत होकर हम सबको भी कुछ ना कुछ उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। और पॉल्यूशन के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक आंदोलन है, वो एक जन आंदोलन है, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक आंदोलन है, उसी प्रकार से इस पॉल्यूशन के खिलाफ, और कैसे हमारे एरिया की, मैं समझता हूँ कि किसी इलाके के बोर्ड पर अगर ये वार्निंग्स आ रही हैं कि यहाँ की एयर क्वालिटी पुअर है या मॉडरेट है, तो वहाँ के इलाके के लोगों का ये संकल्प बनना चाहिए, वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं का ये संकल्प बनना चाहिए, वहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं का ये संकल्प बनना चाहिए। मुझे खुशी है कि अभी कमिश्नर साहब ने और मेयर साहब ने जो अपना यह भाषण दिया, मुझको कुछ कुछ समझ में आया, गुजराती वाला तो कुछ कम समझ में आया, लेकिन जितना समझ में आया उसमें मुझे इतना ज़रूर समझ में आया कि इन्होंने कहा कि सारे लोगों को मिलकर हम इसको आंदोलन के रूप में विकसित करेंगे, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस विषय के बारे में तो आज मुझे केवल इतना ही कहना है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, केवल अगर मैं उसी विभाग की बात करूं, खाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नहीं, केवल अर्थ साइंस की ही बात करूं, तो आपको सुनकर खुशी होगी कि अभी आज हम इसमें इतने एडवांसमेंट पर पहुंच गए हैं कि दुनिया के किसी भी देश से हम ना तो पीछे हैं, और शायद दुनिया के अधिकांश देशों से हम इसके अंदर आगे निकल गए हैं, ये हमारी स्थिति है। आपको याद होगा कि 2004 के अंदर भारत के अंदर एक सुनामी आई थी, और आपको ये भी याद होगा कि 1999 के अंदर एक उड़ीसा के अंदर जो है एक साइक्लोन आया था, और इस सुनामी के अंदर कितने लोग जो है मृत्यु का शिकार हो गए थे, प्राण उन्होंने गवाए थे। 1999 के अंदर भी उड़ीसा के अंदर जब आया था तो उसके अंदर भी लाखों लोगों की जान की तबाही हो गई थी। आज सुनामी के लिए, साइक्लोन्स के लिए, इनके लिए जो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली वार्निंग, जो सिग्नल्स और जो व्यवस्था हमारे सिस्टम में क्रिएट हो गई है हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से, वो इस प्रकार की है कि आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर कम से कम जो ओशन के किनारे के जितने देश हैं, आसपास के 30, 35, 40 देशों को तो हम जानकारी देते हैं, और पिछले 3 साल के अंदर ही हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। हुडहुड का एग्जाम्पल है, आपको याद होगा, फैलिन का एग्जाम्पल है, और अभी पिछले दिनों वारदा का जो है उदाहरण है, जिसके अंदर की 24 घंटे के लिए, यानी कि जहां लाखों लोगों की, सैकड़ों लोगों की जो है मृत्यु के शिकार हो जाते थे अनफॉर्चुनेटली, वहां शायद कहीं 1, 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा जो है इस प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हुई, और वो भी जो है मैं समझता हूँ और एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट जो है उसके लिए फोरकास्ट जो है दिए गए। आज भारत के अंदर हम मौसम की भविष्यवाणी करके, मौसम की जानकारियां देके 21 मिलियन इन किसानों को हम SMS के माध्यम से स्क्रीन्स लगाकर उनके इलाकों में जो जानकारियां देते हैं, जिसके आधार पर वो अपनी खेती को बेहतर करने के लिए, यानी उन्हें कब बीज बोना है, कब जो है पानी को बचाने के लिए, अनाज को बचाने के लिए क्या करना है, कभी अगर हैवी रेनफॉल होने वाला है तो अपना पानी कैसे बचाना है, इत्यादि इत्यादि इस तरह की जितनी भी जानकारियां, जिससे वो अपने जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं उनको वो मॉडिफाई करते हैं। तो इन 21 मिलियन फार्मर्स को जो हम जानकारी देते हैं उसके माध्यम से भारत के GDP में, 50,000 करोड़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और ये कोई डॉक्टर हर्षवर्धन का या अमित शाह जी का कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, ये 2015 के अंदर जो नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है उसकी 2015 की रिपोर्ट सब वेबसाइट्स पर है, सब जगह पर है, उसने ये जानकारी दी है कि भारत के अंदर जो है इतना इम्पैक्ट हुआ। और जब उन्होंने जानकारी दी थी तब तो इतने 21 मिलियन फार्मर तक भी नहीं पहुंचे थे। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में इस देश के एक एक फार्मर तक जो है ये जानकारी हम देने की जो है व्यवस्था करेंगे। इसको हम बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने 400 करोड़ रुपए का नेशनल मानसून मिशन लॉन्च किया है, और आने वाले 2 वर्ष के अंदर आप देखेंगे कि इस नेशनल मानसून मिशन के माध्यम से हम ब्लॉक लेवल तक का जो है वेदर का फोरकास्ट जो है वो देने की स्थिति के अंदर आ जाएंगे। उसके अंदर इतना ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट होगा जो कि, यानी जो वैज्ञानिक दृष्टि से और एडवांस्ड जो मॉडल्स होते हैं, मैं उसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में यहाँ पर आपसे चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मौसम के संदर्भ में, सुनामी की वार्निंग्स के संदर्भ में, आज जो अर्थक्वेक होता है, भूचाल होता है, भूचाल को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, लेकिन उस दिशा में रिसर्च करने की दृष्टि से भारत में जिस स्तर पर हम काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर, कोयना के अंदर, जहां पिछले 50 साल से लगातार भूचाल आता है और इतने ज़्यादा भूचाल आता है कि लोग वहां के परेशान हैं, वहां पर हम लोगों ने 500 करोड़ रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है जिसमें कि ज़मीन के अंदर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक हम जाकर, अभी 3.5 किलोमीटर हम नीचे जाकर और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सेंसर्स लगाकर और उसके माध्यम से सारी जानकारियां लेकर हम भविष्य के लिए मॉडल्स विकसित कर रहे हैं कि अगर अर्थक्वेक के बारे में समय से थोड़ा पहले कुछ भी जानकारी हो जाए तो हमारे जितने मेजर जो सर्विसेज हैं उनका शटडाउन करके हम जो है, और इसी प्रकार से शिलोंग के अंदर, यानी एक तरफ ज़मीन के अंदर रिसर्च और दूसरी तरफ आसमान के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, आयनोस्फेयर के अंदर, मैग्नेटोस्फेयर के अंदर, इन सब के अंदर प्रेशर, डेंसिटी, ये सारी चीज़ों के चेंजेस को पूरा लगातार रिकॉर्ड करते हुए, पिछले 1.5 साल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, आने वाले समय में भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो मोस्ट मॉडर्न जो रिसर्च हो सकती है, समुद्र के अंदर, समुद्र की वेव से जो है बिजली बनाने का, पैदा करने के लिए कोशिश, समुद्र के अंदर गैस हाइड्रेट से जो है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रयास, और इस तरह के लगातार जो दुनिया के अंदर मोस्ट मॉडर्न जो तरीके हो सकते हैं वो सारे के सारे, मैं समझता हूँ कि मोदी जी के ये तो खाली एक अर्थ साइंस मिनिस्ट्री की दो चार बातों का मैंने जिक्र किया, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि ये डिजिटल इंडिया के माध्यम से हर भारतवासी को हर सुविधा उसके फोन के अंदर उपलब्ध हो जाए। जैसे आपने अभी ये ऐप लोड डाउनलोड किया, और इसीलिए आज ये काम इतनी प्राथमिकता पे हो रहा है कि जिस भारत के अंदर 25-26 मई 2014 से पहले केवल 356 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर इस भारत के अंदर डाली गई थी, 356 किलोमीटर केवल 2014 से पहले, आज जब 2017 के अंदर 3 साल पूरा होने पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर भारत के अंदर जो है डाली जा चुकी है, और 2018 के अंत तक इस देश की एक एक पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर डाल के इस देश के एक एक बच्चे और एक एक नौजवान के मोबाइल के अंदर इंटरनेट की सुविधा हम देने के लिए सक्षम होने वाले हैं। एक नहीं पता नहीं कितने तरह के काम। ये वही भारत है जिसमें एक प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसा जो है भारत के लोगों के पास पहुंचता है। प्रॉब्लम तो बता दी उस प्रधानमंत्री ने, ये प्रॉब्लम बताई जो उनके बारे में कहते हैं ये कंप्यूटर युग था, इन्होंने कंप्यूटर भारत के अंदर लाए, मिस्टर क्लीन उनको बोला जाता था, और कभी उस प्रॉब्लम को समाधान करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन इस देश को इंतज़ार करना पड़ा प्रधानमंत्री मोदी का। आज दिल्ली के अंदर एक बटन दबता है, जैसे मैंने यहाँ पर माउस पर दबाया, क्लिक एक दबाया करा तो दिल्ली से 1 रुपया चलता है, तो नागालैंड के अंदर भी, आदिवासी इलाके के अंदर भी, जो सबसे ज़्यादा अनपढ़ आदमी हो, असहाय आदमी हो, उसके खाते के अंदर भी जो है 100 पैसा 1 रुपये के बदले चला जाता है, और वो जब 100 पैसा उसके खाते में चला जाता है उसके ऊपर अगले दिन से ब्याज ऐड हो जाना शुरू हो जाता है। ये परिवर्तन करके दिखाया है हमारी सरकार ने। ये उसी देश के अंदर जहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, लेकिन बैंकों के नेशनलाइजेशन का किसी भारतवासी को लाभ नहीं मिला, इस देश को प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार करना पड़ा। जब 2014 में उन्होंने भाषण दिया था लाल किले से, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की थी, तो हम लोगों को भी जो कैबिनेट के मंत्री थे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ में नहीं आता था कि उनके मन में क्या है, लेकिन जब हमने देखा कि हर मीटिंग में इतनी तेजी से, इतनी मेटिकुलसली उन चीज़ों को प्रोसेस किया जाता था, उनको इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जाता था कि 26 जनवरी 2015 तक हमने देखा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम चला गया। आज 28-30 करोड़ लोग भारत के अंदर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं भारत जैसे 125 करोड़ लोगों के देश में 99.99999% लोगों के खाते खोल दिए भारत की सरकार ने, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आज 5-7 करोड़ टॉयलेट्स सारे देश में बना दिए। क्या इस देश के अंदर पहले प्रॉब्लम नहीं होती थी? क्या केवल प्रधानमंत्री मोदी को ही ये सूझा जब उन्होंने 15 अगस्त 2014 को कहा कि इस देश के लिए दुख की बात है कि इस देश के अंदर हमारी बहन को अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है शौच जाने के लिए? कैसी भयंकर परिस्थितियां थी, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक, भाइयों बहनों कोई ऐसा विषय नहीं है। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि असाधारण प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं, और बड़ी खुशी की बात है। मुझे तो एक विज्ञान का मंत्री होने के नाते, विज्ञान की उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी, हो सकता है, लेकिन विज्ञान के बारे में वैज्ञानिकों से ज़्यादा उनको शायद जानकारी हो गई है, या उन्होंने अपने गुजरात के अंदर समझ लिया है। अभी मैं सुबह गया था आपके सैटेलाइट वाले केंद्र में, तो वहाँ के वैज्ञानिक कह रहे थे कि यहाँ मोदी जी, मैंने पूछा मोदी जी कभी यहाँ पर आए हैं, कहने लगे हाँ जब मुख्यमंत्री थे तब आए थे, तो वो हमारे सैटेलाइट और ये सारी चीज़ों के बारे में तो हमें लगता था कि हमसे भी ज़्यादा बात करते थे। और आपको पता है अभी जो आपने देखा एशियन सैटेलाइट जो छोड़ा गया, ये ऐसा नहीं कि इसकी योजना कोई बहुत ज़माने से चल रही थी, ये जब उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन का बटन दबाया था, बहुत लोगों ने उनको कहा कि ये बटन मत दबाइए, आप नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं गलती से फेल हो गया तो सारा आपके मत्थे पे चढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये फेल होगा तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी, अगर ये सफल होगा तो ये भारत के वैज्ञानिकों की सफलता होगी। और उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि हमें हमारे पड़ोसी देशों के लाभ के लिए हमें सैटेलाइट बनाकर, जिससे सारी की सारी सुविधा हमारे पड़ोसी देशों को मिले,
वो ऐसा सैटेलाइट, एशियन सैटेलाइट हमारे को छोड़ना है। और आपने देखा कि कितने दिन पहले की बात है, 2 साल भी नहीं हुए, अभी वो वाला सैटेलाइट उन्होंने छोड़ दिया, छुड़वा दिया, बनवा दिया, तैयार करा दिया, छोड़ दिया। और सारे आपने देखा कि पूरे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्षों ने किस प्रकार से जो है उनकी जो है तारीफ की और किस प्रकार से धन्यवाद व्यक्त किया। तो दोस्तों, लेकिन ये सब कुछ, जो कुछ भी वो चाहते हैं, ये खाली काम सारे सरकार नहीं कर सकती। हम आपके लिए सफ़र की सुविधा पैदा कर सकते हैं, हम आपके लिए सफ़र जो है उसके माध्यम से आपको सचेत कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों का, अपने समाज का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जो कुछ आपको करना है, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मुझे आपके मुख्यमंत्री जी किसी वजह से आज नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरी गुजरात की सरकार की तरफ से पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को विकसित करने के लिए जो है गुजरात के अंदर कोई किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि यहां अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, पहले तो आपको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि ये इतना खूबसूरत जो आपने यहां पर ये ऑडिटोरियम और जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कम्युनिटी सर्विसेज का ये सेंटर बनाया है। सच्ची बात तो यह है कि इतना खूबसूरत सेंटर मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये मेरे बीजेपी के दोस्तों ने जो है इतना सुंदर जो है अहमदाबाद के अंदर बनाया है। और जो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब कह रहे थे, ऐसा एक नहीं, हमने 29 बनाए, ठीक है ये सबसे बढ़िया वाला है, लेकिन 29 हमने बना रखे हैं अहमदाबाद में। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर चाहेंगे तो ये सफ़र जो है आपके साथी और मित्र के रूप में काम करेगा। हम लोग दिल्ली से बैठकर इसको मॉनिटर करेंगे, हमारे ये जो डायरेक्टर लोग हैं, बेग साहब है, ये सब लगातार इस पर पैनी निगाह रखेंगे। लेकिन जितनी यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशंस है, अहमदाबाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी फेमस है, IIM अहमदाबाद जो है वो देश की प्रतिष्ठित संस्था है, यहाँ पर मैनेजमेंट के लोग हैं, यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, यहाँ पर सैटेलाइट के लोग हैं, ये सारे लोग मिलकर अगर इस काम में लग जाएंगे और ख़ासकर बच्चे और नौजवान, तो अहमदाबाद जो है वो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की दिशा में देश के लिए एक ऐसा मॉडल विकसित करके दिखा सकता है, जिस मॉडल के लेकर हम सारे देश में इसी तरह से चिल्ला चिल्ला के कहें जाओ अहमदाबाद में जाके सीखो, क्योंकि गुजरात में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले एक बार सूरत आया था, तो मुझे बताया गया था सूरत के अंदर सफाई करने का जो मॉडल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो सूरत के अंदर आके हमने कम से कम 10-15 साल पहले उसको देखा था, समझा था। तो अहमदाबाद के अंदर भी मेयर साहब और कमिश्नर साहब, आपको हम ये निवेदन करके जाते हैं, हम आपके साथ हैं, पूरी भारत सरकार आपके साथ है, मोदी जी भी आपके साथ हैं और आपके मुख्यमंत्री भी आपके साथ हैं। आप अहमदाबाद के लोगों के लिए एक ऐसा स्वच्छ वायु का जो है ऐसा वातावरण पैदा करके दिखाएं कि कोई यहाँ पर जो है बच्चा जो है वो दमा के कारण जो है, या कोई भी बच्चा जो है किस प्रकार की तकलीफ के कारण जो है, इन्फेक्शन के कारण जो है वो परेशान ना हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब, और ये मेरा विश्वास इसलिए बढ़ा है कि इतने सारे लोग इतनी देर तक लगातार बैठे रहे किसी प्रदूषण के कार्यक्रम के अंदर, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।